ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोयं स्थिति व्यक्ति अपर उपशमलाय श्रेष्ठा सत्ने न सुरगणाननुमेय तत्वता दृश्याद दर्भ्र कनुननेन विलोकनेन यशी निकेतनमलं शिपता अरविन्दा अनुवाद कृपया सुनिए। विपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने श्रेष्ठ जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपा पूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। कृपया दोहराइए यह अनुवाद। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने श्रेष्ठ जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सर्जन किया है, हम देवताओं पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपा पूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तात्पर्य, दृश्य जगत के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित है। जिस प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रज कणों से आच्छादित हो जाता है, जैसे इस समय है जी, अभी समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है, अतः भौतिक विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, किंतु शास्त्रों अथवा भगवत गीता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि यह विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुणमय व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण हैं, इसलिए देवतागण उनकी दया दृष्टि चाहते थे जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। तो जो भक्त इन कक्षाओं में रेगुलर नहीं आ पाते, जो पहली बार आए हैं, आज रविवार है तो जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं उनसे मैं आज्ञा चाहूंगा कि थोड़ा सा इस अध्याय के बारे में बताया जाए जिससे जो भक्त पहली बार आए हैं उन्हें समझ में आए कि ये भागवतम का किस मतलब क्या चर्चा चल रही है। ये जो स्कंध है, ये चौथा स्कंध है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इस अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली, कि स्वयंभू मुनि और शतरूपा उनकी पत्नी की से जो संतान हुई उनकी वंशावली के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है। तो सबसे पहले मैत्रेय मुनि स्वयंभू जी के बारे में बताते कि उनकी पत्नी शतरूपा से तीन पुत्रियां हुई जिनका नाम था आकुति, देहूति और प्रसूति। तो आकुति जी का विवाह जो हुआ प्रजापति रुचि से हुआ, उनके दो पुत्र भी थे माफ कीजिएगा स्वयंभू मनु के, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो फिर उनकी तीन पुत्रियां आकुति, देहूति, प्रसूति, और आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। उनके एक पुत्र जिनका नाम यज्ञ, जो स्वयं प्रभुपाद जी लिखते हैं या भागवत में बताया कि स्वयं विष्णु के अवतार थे, और एक पुत्री दक्षिणा जिसका नाम था, जो स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार थी। इस तरह से उनके पुत्रों के बारे में बताते हैं। दक्षिणा और यज्ञ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो आप पढ़ सकते हैं भागवतम में। उसके बाद वो देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में बताते हैं कि जो उनकी जो दूसरी पुत्री थी देवहूति स्वयंभू मनु की, उनका विवाह आकुति से माफ कीजिएगा कर्दम मुनि से हुआ। तो कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में आपने तीसरे स्कंध में बहुत विस्तार से पढ़ा था कि कैसे कर्दम मुनि ने शिक्षा दी उनके जो पुत्र थे कपिल देव भगवान, और उन्होंने कैसे शिक्षा दी अपनी माता को। उसके बाद जो उनकी तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष से हुआ, उनके बारे में बताया जाएगा इसी अध्याय में कि कैसे दक्ष और मतलब कैसे दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करा। और ये सब कथाएं इसलिए बताई जा रही है, एक तो ये बात समझने के लिए कि हम जैसे जीवों को, जो इंग्लिश में कहते हैं बंधे हुए हैं, या जो इस जगत में आए हैं, मतलब जो इस जगत में भेजे गए हैं जबरदस्ती, या हम किसी कारणवश इस संसार में हैं, क्या कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं उस शब्द को, एक होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और दूसरे बद्ध जीव, धन्यवाद यश, बद्ध जीव है। हम बद्ध जीवों को यह समझाने के लिए कि जितने भी भागवत में चर्चा की गई है जिन व्यक्तियों की या जिन महामुनियों की, ये सब भगवान के भक्त हैं, और इन भक्तों से हमें समझना चाहिए कि किस तरह से अब हम इस संसार में आ गए हैं तो हमें किस तरह से अपना जीवन बिताना है। तो ये जो बार बार इसमें भागवत में बताया जाता है, इनके बारे में केवल हम अगर सुनेंगे ही तो हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इनके बारे में हमें सुनना चाहिए रेगुलर, मतलब पढ़ना चाहिए ध्यान से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके बारे में पढ़ते हैं और एकदम सुनते हैं इतने सारे हैं, 12 पुत्रों के बारे में बताया गया है, तीन पुत्रियां उनके इतने पुत्र हुए, ऐसी सारी वंशावली गिनवा रहे हैं, तो कई बार लगता है कि इससे हमारा क्या संबंध है। तो बीच बीच में जैसे कर्दम मुनि और माता देहूति के पुत्रों के बारे में बताया, अब इसी जो अध्याय में जो सबसे मुख्य जो प्रसंग जो बीच में आया है वो आया है मैत्रेय मुनि, अभी तक का जो मैत्रेय मुनि और माफ कीजिएगा अत्रि मुनि और उनकी पत्नी के बारे में, जो इसी वंशावली में आया है। इसीलिए वंशावली में हमें समझा, ये जो वंशावली दी है इसमें समझाना चाहते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है इनके बारे में सुनना। क्यों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अभी, कि मैत्रेय मुनि जब वजीर जी को बता रहे हैं कि कर्दम मुनि और देवती के बारे में उनकी 9 पुत्रियों की वंशावली गिनवाते हैं, तो बीच में वो कर्दम मुनि को बताते हैं कि माफ कीजिएगा मैत्र मुनि विदुर जी को बताते हैं मैत्र मुनि कि अनुसुईया और अत्रि मुनि के तीन पुत्र हुए जो कि ब्रह्मा शिव और विष्णु के अंश अवतार थे। तो जो विदुर जो है वह भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो एकदम से उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे कैसे आए ये पुत्र, क्योंकि जहां भी भगवान विष्णु की चर्चा होती है एकदम से भक्त सचेत हो जाता है, अरे कैसे हुआ ये। जैसे हम भागवतम में भी सुनते हैं कि कैसे बलराम जी देवत माफ कीजिएगा देवकी मैया से रुक्मणी जी वहां चले गए, पूछते हैं मतलब भगवान माफ कीजिएगा इन वंशावली के उसमें काफी कंफ्यूज हो गया था नामों में। तो ये प्रश्न पूछते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त लोग जैसे ही भगवान कृष्ण की या विष्णु की चर्चा होती है तो उसके बारे में एकदम से प्रश्न पूछते हैं। तो यहां पर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि कैसे वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा शिव जी और विष्णु के अंशावतार उनके पुत्र के रूप में आए। तो उसी संदर्भ में बताते बताते मतलब श्लोक 16 श्लोक संख्या 16 से 33 तक इसी की चर्चा है। बस वंशावली को एक मिनट के लिए रोक दिया मित्र मुनि ने कुछ समय के लिए और उसी की चर्चा की गई, केवल अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया के बारे में और कैसे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात हमें समझने की है, जो हम भक्त लोग हैं जो साधना में लगे हुए हैं जो बद्ध हैं, माफ कीजिए मेरे जैसे जो बद्ध लोग हैं बद्ध जीव हैं, उनको समझना चाहिए कि ये कथा क्यों कही गई। इसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अत्रि मुनि और अनुसुईया विवाह के बाद एकदम से किसके लिए गए, तपस्या के लिए गए। हमने सुना पिछले श्लोकों में कि वो एकदम से तपस्या के लिए गए और कहां गए, बड़े सुंदर पर्वत पर। पर्वत के बारे में बताया गया है इन श्लोकों में, पर्वत के बारे में बताया गया है। उस पर्वत का नाम बताया गया निर्विंदर पर्वत। उसमें बताया गया सुंदर अशोक वृक्ष लगे हुए थे, उसमें बहुत सुंदर पलाश के फूल थे और सुंदर पानी के झरने बह रहे थे। लेकिन वहां करने क्या गए, वो तपस्या करने गए। और आजकल के जो विवाह होता तो क्या करने जाते हैं पर्वतों पर, लोग कहते हैं हनीमून, बिल्कुल अपोजिट। देखिए एक हम भक्त के बारे में सुन रहे हैं, उनका विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि आप संतान उत्पन्न करो वंशावली बढ़ाओ, तो वो आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद तपस्या करने चले गए। एक आम व्यक्ति को या आम भक्त को जो साधारण से माफ कीजिएगा ग्रस्त जो भक्त हैं, कम से कम उनको ये बात बहुत अच्छे से अपने आने वाली संतानों को समझानी चाहिए, खुद तो समझनी ही चाहिए कि आप विवाह करने जा रहे, एक बहुत जिम्मेवारी का कार्य है ये। उसके बाद हनीमून के लिए नहीं जाना, उसके बाद पहले तपस्या करनी है। ये भागवतम से हमें सीखने को मिलता है सबसे पहले शिक्षा कि एकदम विवाह के बाद दोनों पति और पत्नी तपस्या के लिए चले गए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले ब्रह्मचारी जीवन क्यों जरूरी है, कि एक अच्छा ब्रह्मचारी ही एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। हमारे एक सन्यासी हैं, हमारे यहां टेंपल प्रेसिडेंट भी थे, वो बहुत अच्छा इस पे एक बहुत सेमिनार देते हैं कि क्यों गृहस्थों को ब्रह्मचारियों को मेंटेन करना चाहिए। ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारियों को बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करें, उन्हें किसी चीज की चिंता होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से मंदिर चलेगा, किस तरह से अर्थोपार्जन होगा। ये गृहस्थों की जिम्मेवारी होती है। जब एक ब्रह्मचारी बहुत अच्छे से ब्रह्मचारी शिक्षा लेगा और अगर वो किसी कारणवश या किसी भी अपने दैववश गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वो एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। तो उसको ये बात शुरू से समझ में आएगी कि मुझे विवाह के बाद हनीमून पे नहीं जाना, विवाह के बाद भी मुझे तपस्या करनी है जिससे और अच्छे भक्त आ सके इस संसार में, और प्रचार बढ़े, और लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में समझ आए जिससे वो अपना जीवन समझा सके, मतलब सफल बना सके। अत्र मुनि ने एक पैर पे खड़े होकर 100 साल तक तपस्या करी। इसमें तो थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाहूंगा इन श्लोकों में। कई बार भक्त लोग ठीक से समझ नहीं पाते या समझ भी पाते, तो लेकिन मैं अपना आपसे अनुभव या रियलाइजेशन शेयर करना चाहूंगा कि अत्रेय मुनि 100 साल तक तपस्या करते रहे एक पांव पर खड़े होकर, और उसके बाद उन्हें दर्शन हुए, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु उनके सामने आ गए। लेकिन प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं तात्पर्य में बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं कि अत्रेय मुनि शुद्ध भक्त नहीं है। एकदम सा चंबा हो जाता है, एक व्यक्ति 100 साल तक एक पांव पे खड़ा है और स्वयं तीनों जो इस संसार को चलाने वाले हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, उनके सामने खड़े हैं और फिर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो इसको समझना चाहिए ठीक से, क्यों ऐसा लिखा प्रभुपाद जी ने। खैर आगे वाले श्लोकों में से भी बिल्कुल बिल्कुल मतलब स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अत्रेय मुनि स्वयं कहते हैं कि मैंने तो आप तीनों को नहीं बुलाया था, मैंने तो उनको बुलाया था कि जो इसके नियामक है, जो इसको पूरा चलाते हैं इस संसार को। इसका मतलब अत्रेय मुनि को नहीं पता था कि सर्वश्रेष्ठ या परम भगवान कौन है। तो इसका मतलब यह समझना चाहिए भक्तों की, यार अरे मुझे तो बहुत ज्यादा पता है, मुझे तो पता है भगवान कृष्ण है सब कुछ करने वाले, और मैं अत्रेय मुनि से सर्वश्रेष्ठ हो गया। कई बार भक्तों के मन में ऐसा विचार आ सकता है, क्योंकि हमें तो पहले दिन से ही पता चल जाता है, प्रभुपाद जी की बुक आई थी कृष्णा, उसमें बार बार बताया जाता है, भगवद्गीता में प्रभुपाद जी के पहले अध्याय से शुरू हो जाते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उसी की पूजा करो। इसका मतलब क्या ये जो हम हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ हो गए? नहीं, कदापि नहीं। अत्रेय मुनि का जो चर्चा हो भागवतम में चर्चा की जा रही है, क्या हमारी चर्चा भागवतम में है? नहीं। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए, एक ये कि प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हमें। चैतन्य महाप्रभु गोलोक रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको देने के लिए आए। तो हमें इन शिक्षाओं को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। हमारे लिए क्या तपस्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से हमारी तपस्या हमें समझा दी है। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि आप जाइए जंगलों में और एक पैर पे खड़े होइए, कर भी नहीं सकते। अगर कह दे हमें कि जाइए हिमालय जाइए और एक पैर पे खड़े हो जाइए, कितने लोग खड़े हो पाएंगे? प्रभुपाद जी ने बहुत एक आचार्य हैं, भगवान के जो मन का जो अभिष्ट है, जैसे रूप गोस्वामी मनोअभिष्टम, श्री चैतन्य मनोअभिष्टम, वो जानते हैं। उसी लाइन में श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को यथा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने, हर एक तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कौन भगवान कौन है। तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में है, बहुत भाग्यशाली है वो लोग। इस जो ये अत्रेय मुनि की कथा से पढ़ के हमें समझना चाहिए, देखिए अत्रेय मुनि जैसे महान ऋषि को भी पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन, करने का सर्व कारण कारण कौन है। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं साफ साफ कि उस तात्पर्य में लिखते हैं कि चार तरह के भक्त आते हैं, उनमें से एक भक्त अत्रेय मुनि को गिना है उन्होंने। क्योंकि प्रभुपाद जी ये नहीं कहना चाहते कि अत्रेय मुनि शुद्ध, ये वो उस तात्पर्य से हमें समझाना चाहते हैं। विशेष का प्रभुपाद ने उस पर तात्पर्य लिखा, और श्लोकों पर नहीं लिखा, उस पर तात्पर्य लिखा, यही समझाने के लिए कि आजकल के जो साधक नव दीक्षित या नव नए भक्त हैं, जो कलयुग के दुर्भाग्यशाली जीव हैं, दुर्भाग्य इन सेंस कि जो लोग भक्ति में नहीं आते, नहीं आ पाते, हम तो भाग्यशाली हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अब हमें 100 साल तक एक टांग पे खड़ा नहीं होना, लेकिन तपस्या जरूर करनी है। हमारी तपस्या क्या है कि मंगल आरती आना है। हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे इस बात पर, तो कहते थे प्रभुपाद जी ने लिखा बोला कि अगर आप चल भी नहीं पा रहे तो रेंगते हुए मंगल आरती आइए, इतना मतलब प्रभुपाद ने बोला, ये तपस्या है हमारी। लेकिन कितने हम तपस्या कर पाते हैं? रोज 16 माला बड़ा ध्यान पूर्वक करना है, ये तपस्या है हमारी। माला माला करते हुए ये नहीं कि फोन भी हो रहा है और बातें भी हो रही हैं, कम से कम 16 माला। चार नियम तो पालन करना ही है। चार नियम में जैसे किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं, किसी भी तरह का नशा नहीं, किसी भी तरह का गैम्बलिंग नहीं, चोरी जुआ नहीं। तो गैम्बलिंग में टीवी देखना भी आ जाता है। ग्रस्तों के लिए विशेष सूचना है ये कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम आंखों के द्वारा नियम भंग कर रहे हैं। चार नियम पालन करना कोई आसान कार्य नहीं है। अगर हमारा मन अभी भी फिल्मी सॉन्ग में चला जाता है कभी कभी, तो इसका मतलब हमारा अभी मन उन चारों नियमों में पूरी तरह से दृढ़ नहीं हुआ। अभी भी हमारा मन अगर किसी भौतिकवादी की पार्टी में जाने को होता है कि आज उसने पार्टी में बुलाया, चलो हम भी चलते हैं, तो हमारा मन अभी भी चार नियमों में सुदृढ़ नहीं हुआ है। कभी कभी हमें लगता है चार नियम तो बड़े आसान है। आसान नहीं है, बड़े गहन, बड़े ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा पहले उसको। जब इन कथाओं को सुनेंगे, जैसे मैंने बताया कि अत्रि मुनि और अनुसुईया के बारे में सुनेंगे, और जब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऐसे लिखा तो क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? केवल इसीलिए कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जितने भी सदस्य हैं बड़े ध्यानपूर्वक मेरी इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनको ये समझ आएगा, तब दृढ़ता आएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी तपस्या करनी है। और रमाकांत प्रभु भी क्लास दे रहे थे तो उन्होंने बड़े मजाक में ये बात बोली कि उन्होंने कहा भगवान कृष्ण तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, जो वो लेके जा रहे थे यमुना जी पार करना चाहते थे, तो यमुना जी जब तक उनके मुंह तक नहीं आई तब तक भगवान ने भी चरण नहीं दिए यमुना को। तो तपस्या तो भगवान चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हमारी पवित्रता के लिए। खैर, वो तो लीला थी भगवान की, वासुदेव जी से वो तपस्या नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम तपस्या करें। हम तपस्या करेंगे कलयुग के जीव तो पवित्र होंगे, और बिना पवित्र हुए भगवत धाम जाना असंभव है। हमें याद है महानिधि महाराज एक क्लास दिल्ली में दिया था उन्होंने। महानिधि महाराज एक प्रभुपाद जी के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और काफी पुस्तकें भी लिखी है। तो उनसे एक प्रश्न पूछा दिल्ली में एक व्यक्ति ने कि पवित्र होने की क्या जरूरत है, भगवान तो कृपावश ले आ सकते हैं, किसी को भी क्या जरूरत है पवित्र होने की? तो उन्होंने बड़ा साधारण सा मतलब उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला आप अमेरिका जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं क्यों? वो तुम्हारा भाई डॉक्टर का टेस्ट लेते हैं अमेरिका जाने से पहले। क्यों? आपको डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। क्यों? आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। कहता जी प्रूफ, अपने आपको बताने के लिए कि मैं ठीक व्यक्ति हूं, अमेरिका जा रहा हूं। कहते जब इस पृथ्वी से उस एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए तुम्हें इतनी सारी क्वालिफिकेशन चाहिए तो भगवत धाम जाने के लिए नहीं चाहिए क्या? भगवत धाम ऐसे ही चले जाओगे? नहीं नहीं, माया शक्ति जाने ही नहीं देगी, माया शक्ति पकड़ लेगी। माया शक्ति का थैंकलेस टास्क है ये। थैंकलेस कहते उसको कोई धन्यवाद नहीं देता इसके लिए माया शक्ति को, लेकिन वो रोक के रखेगी। अनर्थ बार बार सामने आएंगे, इसीलिए तपस्या करने की बहुत आवश्यकता है। जब ध्यान पूर्वक करना ही पड़ेगा। कोई भक्त कहे 25 साल से जब कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा? प्रभु जी ध्यान पूर्वक बोला प्रभुपाद जी ने 16 माला, और कम से कम, ज्यादा भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा प्रभुपाद जी ने, मत कीजिए, कम से कम 16 माला करनी है। तो इस तरह से अत्रेय मुनि और इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, तपस्या जरूर करनी है। बिना तपस्या के मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल ही क्या है। लेकिन जो सिंपल, जो साधारण तपस्या शील दिखती है साधारण, मतलब अगर जो हमारा उद्देश्य या जो हमारा गोल है या जो चीज हमें प्राप्त होगी उससे अगर हमें तुलना की जाए, हमारी तपस्या तो कुछ भी नहीं है। देखिए अत्रेय मुनि जो जिनको पता ही नहीं है भगवान के बारे में, वो 100 साल एक टांग पे खड़े रहे, और हमें तो गोलों के प्रेमधर जो वैकुंठ जगत में भी सर्वश्रेष्ठ जगत है, जहां जीव को संपूर्ण आनंद मिलता है, पूर्ण रूप से किसी भी भाव में रह सकता है भगवान के साथ, सखा भाव में रह सकता है या किसी भी भाव में रह सकता है, वो चीज प्राप्त होगी। उसके संदर्भ में या उससे अगर तुलना की जाए, हमारी तपस्या तो कुछ भी नहीं है। तब व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होकर करना पड़ेगा। तो फिर इस चर्चा के बारे में करते करते पूरे 16 श्लोक माफ कीजिएगा 16 से 33 श्लोकों में ये चर्चा चली है, यही बात समझाने के लिए। और उसके बाद जो स्वयंभू मुनि की जो तीसरी पुत्री है उसके बारे में बताते हैं मैत्रेय मुनि कि कैसे उनसे पुत्रों का उनकी वंशावली चली आगे। और उसके बाद श्लोक संख्या 48 से जो स्वयंभू मुनि की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति उनकी वंशावली के बारे में बताते हैं। उससे पहले कर्दम मुनि की 9 पुत्रियों की वंशावली के बारे में बताया, फिर तीसरी पुत्री जो स्वयंभू मुनि की प्रसूति है उनके बारे में बताते हैं जिनका विवाह दक्ष से हुआ था, तो उनकी 16 पुत्रियों के बारे में बताया कि उनकी 16 पुत्रियां हुई। 16 पुत्रियों में 13 पुत्री जो थी उनकी, उनके नाम भी उसमें दिए गए हैं, उन 13 पुत्रियों का विवाह धर्म नामक प्रजापति से हुआ। एक पुत्री का विवाह नामक अग्नि से हुआ और बाकी एक पुत्री का विवाह शिव जी से हुआ और एक पुत्री का विवाह एक साधु से हुआ, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उनसे हुआ। तो जब धर्म और जब ये प्रसूति जी की वंशावली जी के बारे में बता रहे थे, स्वयंभू मनु की वंशावली के बारे में बता रहे थे, तब धर्म और जो 13 पुत्रियां थी उनमें से एक पुत्री जिनका नाम था मूर्ति, उनसे नरनारायण जी का आविर्भाव हुआ। इस तरह से वंशावली चल रही है। और फिर नरनारायण जी के बारे में बात आई, विष्णु के बारे में बात आई, यहां प्रश्न तो नहीं पूछा लेकिन उसके बारे में शिल देवतागण उनका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जब भी भगवान आते हैं उनका गुणगान करने के लिए देवता आते हैं। इवन अत्रे मुनि जब ब्रह्मा शिव और आए थे उनके साथ भी देवतागण आए थे गुणगान करने, या अत्रे मुनि का दर्शन करने के लिए कि कैसे महान संत हैं, कैसे महान साधु हैं जिनके घर में स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त या भक्ति करता है तो उसका जो गुणगान है देवता गण भी करते हैं। देवता देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्त बनता है या भक्त बनने का प्रयास करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, वो उसकी हर तरह से सहायता करने का प्रयास करते हैं देवतागण। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी अलग से पूजा शुरू कर देनी चाहिए, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवतागण समझते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको अब जरूरत नहीं है हमारी पूजा करने की। कई बार जब प्रचार करने जाते हैं तो भक्त लोग पूछते हैं कुछ जो शुरू शुरू में कि ऐसा क्या होगा हम उनकी पूजा छोड़ देंगे तो नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होंगे, वो और प्रसन्न हो जाएंगे। देवतागण और प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है। यहां नर नारायण आया है उनका गुणगान करने, देवतागण आया है। उससे पहले अत्रि मुनि के पास देवतागण आए थे। हम जानते हैं जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो रहा था तो देवतागण आए थे, पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर, ये भी इस तरह से एक पूरी कथा है इसके ऊपर। और देवतागण फिर से वो भगवान का गुणगान करते हैं हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल उसको और बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है, हमें किस तरह से भक्ति करनी है, क्यों कृष्ण भक्ति करनी है, क्योंकि स्वयं देवतागण वो बात कर रहे हैं। तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए हमें कि एक अलग कृष्ण आर सब भ्रत्या, सब उनके सेवक हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अलग से उनके लिए पूजा करना उसमें कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। केवल कृष्ण, जैसे अभी हम गुरुकुल में हम एक क्लास ले रहे थे तो उसमें समझा रहे थे, उसका उदाहरण नामामृत एक बुक है जिसमें नाम के बारे में बताया गया है कि हरे हरि का नाम लेने से क्या लाभ होता है। तो उसने बताया बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से, प्रभुपाद जी भी कई बार एग्जांपल दे चुके हैं कि जिस तरह से पेड़ के जड़ में पानी देने से सारी उसकी टहनियां पत्ते सब में पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार से जैसे कृष्ण भक्ति करने से या हरि नाम लेने से सारे केवल देवी देवता है नहीं, सारे पितृ ये वो सब, किसी का ऋणी नहीं रह जाता व्यक्ति, किसी का ऋणी नहीं रहता। नहीं तो एक व्यक्ति जो जीव है उसके ऊपर कितने ऋण होते हैं, पृथ्वी का ऋण है, इस पृथ्वी पर हम रोज चलते हैं, जल देवता का ऋण है, वायु देवता का ऋण है, सूर्य देवता का ऋण है, उसके बाद हमारे पिताजी हमें शरीर दिया उनका ऋण है, खिलाया पिलाया बड़ा करा, कितना ऋण होता है। एक सभ्य व्यक्ति ये सोचता है, असभ्य व्यक्ति नहीं सोचता। असभ्य व्यक्ति तो क्या, मैं और मेरे पास, सबसे मूर्ख वो समझता मैं खुश हो जाऊं मेरे पास सब कुछ है तो बस, उसे नहीं पता था इस चेतना से वो दुखी होगा सुखी नहीं होगा। और हम देखते हैं आजकल का समाज, व्यक्ति समझता मुझे मिल जाए, बच्चों को शिक्षा दी नहीं आती वैदिक शिक्षा, तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो कहते हैं पापा हरे कृष्णा नहीं बोलते बाय बाय बोलते हैं, मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी के साथ आप अपना देखभाल कीजिए। उस बेवकूफ को नहीं पता कि यार आप वैदिक धर्म को पालन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप दुखी होंगे। कृष्ण भक्ति में सिखाया जाता है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। इसी तरह जब कृष्ण भक्ति व्यक्ति करता है तो वो ये बात समझता है अच्छे से, वो माँ बाप की सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वो मेरे माँ बाप है, वो इस तरह से भी करता है कि ये भी कृष्ण भक्त है, ये भी भगवान के जीव है। माता अपने पुत्रों की सेवा इसलिए नहीं करती वो केवल मेरे पुत्र है, वो ये समझते हुए करती है। सच में अगर कृष्ण भावना भावित है तो समझते हुए करती है कि ये दोनों कृष्ण के अंश है, अगर मैं इनकी सेवा करूंगी तो कृष्ण खुश होंगे। और मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का, कि कृष्ण किसी तरह प्रसन्न हो जाए। तो कृष्ण भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल है, हम अपने गुरुकुल में समझाते हैं बच्चों को कि कृष्ण भक्ति कोई ये नहीं कि किताबी ज्ञान है, ये भागवतम केवल कहानियां नहीं है। कई बार लोग समझते हैं अरे 100 साल तक कैसे खड़े हो गए, खड़े हुए। प्रभुपाद जिसका एग्जाम्पल देते थे कि एक कुएं के मेंढक को बताओ कि समुद्र होता है तो वो कहेगा कितना बड़ा होता है, वो अपना पेट फुला रहा है, इतना बड़ा नहीं 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 इससे बड़ा, तो उसका पेट ही फट जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, जो परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उस पर विश्वास नहीं है उसको, वो अपना अनुमान लगा रहा है। नहीं, इस पर विश्वास करना पड़ेगा और इसको समझ के फिर अपनी साधना आगे बढ़ानी पड़ेगी, आचार्यों से ठीक से समझ के फिर हमें अपनी साधना को अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम वंशावली पढ़ेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो मनन करेंगे, भक्तों से चर्चा करेंगे, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। तभी कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो इस तात्पर्य में जो आज का श्लोक है जिसमें देवतागण गुणगान कर रहे हैं भगवान का, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देवतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दया दृष्टि दीजिए देवतागण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरू में लिखते हैं कि भौतिक प्रकृति में कई बार हमें दिखता सारे कार्य बड़े सुंदर सुंदर कार्य दिख रहे हैं, जैसे अभी बादल आ गए हमें सूर्य नहीं दिख रहा, ये कहीं पे पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं। तो व्यक्ति समझता है इसका ये सब तो अपने पा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं इसमें कि वैज्ञानिक लोग समझते हैं, अतः भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, सब कुछ नेचर से अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे आम व्यक्ति को लगता है, खासकर जो मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं जो सोचते हैं, वैज्ञानिकों को भी एक तरह का मुनिगण कहा जाता है कि जो सोचते हैं ये नहीं वो नहीं उसके बाद इस तरह से कोशिश करते हैं, तो वो समझते हैं सारे कारण जो अपने आप हो रहे हैं या प्रकृति इसका कारण है। और वैज्ञानिक तो इतना मूर्ख बनाते हैं, बिग बैंग थ्योरी दे देते हैं, आजकल नहीं पढ़ाते कि अपने आप कहीं से गोला फटा और ऐसे हो गया वैसे हो गया, और मूर्ख जनता बेचारी ऐसी है या अज्ञानी जनता ऐसी होती है क्योंकि इन शिक्षाओं का प्रचार नहीं हो रहा, वो भी मान लेते क्या करें, मार्क्स लाने किसी तरह, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पढ़ाई करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, रूपा जी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से बादल आ गए, अब कोई अज्ञानी व्यक्ति कोई बच्चा समझे कि बादलों से रोशनी आ रही है, लेकिन पिता या बड़े व्यक्ति को समझ वो समझ सकता है कि नहीं इन बादलों के पीछे सूर्य है, उनसे ही रोशनी आ रही है। तो ये समझाने के लिए हमें बद्ध जीवों को कि सर्व कारण की जो कारण है वो भगवान कृष्ण है। और प्रभुपाद जी 3 श्लोकों का इसमें अनुवाद लिख रहे हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं भगवत गीता का, कहते समस्त जगत का परम कारण वो समाप्त किया, किंतु शास्त्रों अथवा भगवत गीता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है। और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुण व्यक्तियों को नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। देखिए पहले भगवद गीता का उदाहरण लेते हैं। भगवद गीता में भगवान बिल्कुल साफ कई बार बोलते हैं, एक बार नहीं कई बार बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं अहम सर्वस्व परभवो मता सर्वस्व परवत्मा इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो जानता है कि मैं ही सब जगह, अहम सर्वस्व परभवो मता सर्वस्व, मेरे से सब कुछ आ रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। खैर आप भक्त लोग हैं सब, आप तो समझते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझते हुए इसका प्रचार करना है बहुत अच्छे से। इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं अन्य ग्रंथों में ब्रह्म संहिता का उदाहरण देते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सर्व कारण कारण है। उसके बाद महाभारत का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसमें कि सतोगुण व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। परित्राणायाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं मैं। तो उनसे दया की दृष्टि, मतलब देवतागण कह रहे हैं कि हम पर दया कीजिए। तो प्रभुपाद जी उसी बात को समझाने के लिए कि दया कैसे प्राप्त होगी, इन सब बातों का प्रचार करना पड़ेगा। क्यों प्रभुपाद जी प्रचार पर इतना जोर देते थे? हमने पिछले 3 स्कंद में भी सुना था, आप सबको शायद जो रेगुलर आते हैं उन्होंने सुना होगा कि जब भगवान कपिल से माता देवती ने पूछा आप इस जगत के कल्याण के लिए भी मुझे बताइए, एक प्रश्न है उसमें, तो भगवान कपिल बहुत खुश हुए थे। उसमें लिखा है श्लोक में भगवान एकदम मुस्कुरा दिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में कि जैसे ही कोई जीव ये इच्छा करता है कि भगवान के नामों का प्रचार करना है, मैंने कोशिश करनी है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब करता है उसका तो फिर कहना ही क्या। जब प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ रहे हैं, जब प्रभुपाद जी को दूसरी बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक पत्र में लिखा कि आप पढ़े लिखे हैं और आप पहली मुलाकात में उन्होंने जो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, तो पहली उनकी जो मीटिंग हुई थी प्रभुपाद जी से, तो उन्होंने बोला कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। फिर दूसरी बार लगभग 10 साल बाद प्रभुपाद जी ने उनके व्यास पूजा पे उनको पत्र लिखा। और व्यास पूजा में जब उन्होंने बहुत सुंदर एक बहुत छोटी सी पोयम लिखी थी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने उन्हें उत्तर दिया था वापस। फिर उन्होंने बोला कि आप फिर वही बात बोली कि आप पढ़े लिखे हैं, कोशिश कीजिए कि भक्तों का इंग्लिश में अनुवाद कीजिए और प्रचार कीजिए, जो भक्त लोग या जो जीव हिंदी और बंगाली नहीं समझते आप उनके लिए इंग्लिश में प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी को वो बात, प्रभुपाद जी 26 साल के थे जब मिले थे, तो तब 10 साल बाद देखिए दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिला, 36 साल के दशक प्रभुपाद जी। उसी दिन प्रभुपाद जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये रे गुरु की है, बैक टू गॉड हेड। उन्होंने इंग्लिश में अकेले, वो तो अब जो हम पढ़ेंगे, हम आजकल प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो अकेले वो कैसे, उन्होंने अकेले सर्दियों में उनके पास कोट नहीं था पहनने के लिए। प्रभुपाद लीलामृत में सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं सर्दियों में उनके पास कोट नहीं था पहनने के लिए, तब भी वो दिल्ली जाते थे बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपवाने के लिए कोशिश करते थे। और गर्मियों की कथा तो आपको पता ही है कि अकेले दिल्ली में वो जब प्रचार कर रहे थे तो उनको सनस्ट्रोक हो गया था, गिर पड़े थे। और ये बात 36 साल की नहीं है, ये तो बात की बात है। जब वो 56 साल के थे, जब वो घर से आ चुके थे, तब की बात बता रहा हूं, जब वो वृंदावन से दिल्ली जाते थे, तो इतना प्रयास करते थे प्रचार करने का। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति प्रचार करता है तब भगवान की कृपा मिलती है, तब कृपा आती है। गुरु मुख पद्म वाक्य छित्रते करैया क्या आर ना करी हो मने आशा। रूपा जी ने विशेष ये जो गुरु परिणति है, गुरु जी का जो हम गुणगान करते हैं, विशेष रखा समझाने के लिए। रूपा जी क्यों बोलते कि मैंने सब कुछ दे दिया है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है या कुछ जाने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे ग्रंथों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, जो मैंने दिया उसको ठीक से फॉलो करो। यही बात समझाने के लिए, यही भागवतम के इन्हीं बातों को, कि इस तरह से कृपा आती है जब व्यक्ति साधना के साथ प्रचार में लगता है। एक बच्चा भी बता सकता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का, कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और सबसे सबसे जो आसान तरीका है, और प्रभुपाद जी को भी बहुत पसंद है, और वर्तमान आचार्य जो हमारे गुरुजन है उनको भी बहुत पसंद है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना बुक डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करने के लिए। प्रभुपाद जी ने विशेष भक्ति वेदान बुक ट्रस्ट की स्थापना करी इसीलिए कि ये किताबों का वितरण चलता रहे 10,000 साल तक। छोटे छोटे बच्चे भी कर देते हैं, एक व्यक्ति आज नहीं पढ़ेगा, हो सकता है उसके पुत्र पढ़े, और एक भक्त बन गया अगर शुद्ध भक्त किसी परिवार में, उसका प्रहलाद महाराज तो उसके बारे में गुणगान करते ही हैं। इस तरह से दया आती है। रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य को समझाने के लिए कि इसका प्रचार करना है, पहले बहुत अच्छे से समझते हुए ध्यान पूर्वक पहले साधना करनी है, बड़े ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना है, इसका जप करना है, कीर्तन में बड़े ध्यान पूर्वक अच्छे से भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत ध्यान पूर्वक जप करना है, बहुत ध्यान पूर्वक सेवा करनी है, जो सेवा मिली है कोई भी सेवा है, तब ये जो दिव्य ज्ञान है हृदय प्रकाशित होगा, तब ये जो मनुपुत्रों की वंशावली को जब पढ़ रहे हैं तब हमें समझ आएगा क्यों ऐसा इनके बारे में समझाया जा रहा है। और फिर प्रभुपाद लिख भी रहे हैं, देखिए कई बार इस बात के लिए घबराहट भी होती है, अत्रि मुनि जैसे बताइए 100 साल तक उन्होंने तपस्या करी, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, हमें समझाने के लिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक साधना करनी है। और बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ जो प्रभुपाद जी ने हमें साधना का जो सिस्टम दिया उसको फॉलो करना है, कोई शक नहीं है कि फिर भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे। प्रभुपाद जी ने तो इतना ही बोल दिया, मैंने पीछे का द्वार खोला हुआ है। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरह से साधना कर सकूं और प्रचार करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? यस प्रभु जी। जिनको प्रसाद के लिए जाना वो जा सकते हैं, वैसे ऑलरेडी भक्त लोग जा रहे हैं, और जिनको प्रश्न का उत्तर सुनना है वो सुन सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि कई बार जब प्रचार के लिए जाते हैं तो व्यक्ति कहता है हमने तो दूसरे गुरु से मंत्र लिया हुआ है, तो उसको कैसे समझाएं हम कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, है ना, यही प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले जब हम प्रचार करने जाते हैं तो एकदम से उसको इमीडिएटली नहीं बोलना चाहिए कि आप छोड़ दो, सीखना चाहिए। देखिए लीलामृत में हमने लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत, तो उन्होंने जब वो गए विदेशों में तो उन्होंने कहा छोड़ दो, कुछ नहीं बोले वो। इस बुलेट्स बनाते थे वो, कौन से इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन बनाते थे, कीर्तन करवाते थे, गुलाब जामुन देते थे। व्यक्ति को बोले ठीक है अगर आप जब कर रहे हैं ठीक है, उसका मत कीजिए, क्योंकि वो समझेगा नहीं उस वक्त, अभी वो अज्ञान में है, वो समझेगा नहीं। तो पहले उसको बोले साथ में ये जप लीजिए, बोलो आपके गुरु ने ये तो नहीं बोला ना कि ये मत जपिए, वो 100% कहेगा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि और गुरु बोलते नहीं है ये बात, क्योंकि वो जो भी है बात। लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल गोल हमारा क्या है बिल्कुल बताना चाहते हैं। मैं बताना भूल गया, एक भगवत गीता के एक श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कारो, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, मैं भी थोड़ा सा मैं इधर उधर हूं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें केवल कृष्ण का ध्यान करना है, विष्णु का भी नहीं बोलते हैं, लिखते हैं क्लियरली विष्णु का भी नहीं करना, राम का भी नहीं करना। देखिए ये आचार्य है, हमें केवल कृष्ण का, और कौन सा कृष्ण का, जो वंशी लेके खड़ा है, मोर पंख लगे हुए त्रिभंग में, बता रहे हैं वो। तो हमको प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए, प्रभुपाद जी सिखाया है, इसलिए तो आचार्य है वो, अपने जीवन से सिखाया। तो आप उस व्यक्ति को मत बोलिए एकदम से, उसको बोलिए ये जब कीजिए, खूब महाप्रसाद खिलाइए, जब भी वृंदावन आए आप उसके सच में शुभ चिंता करते, उसके लिए महाप्रसाद ले जाइए, लो भैया ये खाओ, प्रभु जी ये खाइए। जब आप देखेंगे ये व्यक्ति कितना प्रेम करता है मेरे से, तब वो जिज्ञासा करेगा, महाप्रसाद खाएगा, जैसे प्रभुपाद जो उन्होंने, तब उन्होंने प्रभुपाद जी से जिज्ञासा करी, देन प्रभुपाद स्टार्ट, आपको अब चार नियम फॉलो करने हैं, आपको 16 माला करनी है, पहले तो 64 माला बोली थी, नो नो नो, सब घबरा गए, फिर कहते नहीं, फिर कहते कम से कम 16, कम से कम 16 भी बहुत ध्यानपूर्वक पूरी शक्ति के साथ, भूल जाइए उस संसार को, बच्चों को, पुत्रों को या वाइफ को, आप और कृष्ण बस। तो इस तरह से उस व्यक्ति को करना है, एकदम मत कीजिए। जब वो जिज्ञासा करेगा तब भगवत गीता खोलिए, कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये देखिए पढ़िए इसको, इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या समझाएंगे आधे घंटे में एक व्यक्ति को, एक घंटे में क्या शक्ति है हमारी, हमारी शक्ति है प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, बस वो दे दीजिए उसके हाथ में, बोलिए कम से कम एक श्लोक पढ़िए डेली, फिर वो लाइन पर आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, दिल मंदिर में एक थे, वो वैष्णो देवी हर संडे बाय फ्लाइट जाते थे, वेरी रिच पर्सन, हर संडे बाय फ्लाइट, टाइम नहीं है उसके पास, सुबह फ्लाइट पकड़ते थे, उतरते थे, फिर वहां से जाते थे पैदल, जैसे भी वहां से जम्मू तक, वहां से गाड़ी करके टैक्सी करके ऊपर, फिर वहां से जैसे भी करके, और उसी शाम को वापस, फर्स्ट क्लास डिवोटी। अभी उनको बोला नहीं आप छोड़ दो वैष्णो देवी जाना, नहीं ठीक है करते रहो, टेक दिस प्रसाद, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।